Yashodanandana braja janangana Yashodanandana braja janangana Yamuna tira vanacha
Thank you.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
स्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य भी ब्यूटीफुल आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, निताई गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटी, हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटी, हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौर. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 33 श्लोक संख्या 38 से हम चर्चा करेंगे आज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. वैचित्रवीर्य अभिहितं महत्महात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतं अतिमर्त्यं पार्थविं गतिम् आप्नुयात्. वैचित्रवीर्य अभिहितं महत्महात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतं अतिमर्त्यं पार्थविं गतिम् आप्नुयात्. वैचित्रवीर्य अभिहितं महत्महात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतम् अतिमर्त्यं पार्थविं गतिम् आप्नुयात्. शब्दार्थ कृपया दोहराइए. विचित्र वीर्य, हे विचित्र वीर्य के पुत्र विदुर, अभिहितम कहा गया महत महान महात्मय महानता सूचकम उद्बुद्ध करने वाला अस्मिन् इसमें कृतम किया हुआ अतिमर्त्यम असामान्य पार्थविम पृथु महाराज के संबंध में गतिम उन्नति लक्ष्य आपनुयात प्राप्त करना चाहिए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आइए आइए प्रभु जी, प्रसाद लाए भक्तों के लिए। धन्यवाद। अच्छा, प्रभु जी का जन्मदिन है, 80 साल के हो गए हैं प्रभु जी। प्रभु जी को आप प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
अनुवाद सुनिए पहले। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। कृपया दोहराइए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज पृथु की तरह भगवान के धाम को वापस जाता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में आया हुआ श्रावयेत शब्द इंकित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए, वरन अन्यों को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपदेश देना कहलाता है। इंग्लिश में लिखा प्रीचिंग, यह प्रचार कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अभ्यास की संस्तुति की है। यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय 128वां प्यार। जिससे भी मिलो उसे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के वृतांत सुनाओ। पृथु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृतांत के समान ही शक्तिदायक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं तथा पृथु महाराज के कार्यकलापों में अंतर ना माने, और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के विषय में सुनने के लिए अन्यों को प्रेरित करें। केवल अपने हित के लिए ही उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय में पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करें। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुखे देवी प्रणाम। स्वामि हरि प्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पास्ट टाइम है ये हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज के साथ श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में मिले। मैंने सुना है, अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो मुझे कर सकता है बाद में। भक्ति चारू महाराज उस वक्त वहां पर चतुर्मास्य कर रहे थे और बहुत तपस्या वाला जीवन बिता रहे थे वो, और काफी उनका गुणगान हो रहा था मायापुर में। काफी भक्त उनसे इम्प्रेस थे, बहुत बढ़िया। श्रील प्रभुपाद जी आए प्रचार करके वहां पर, तो उन्होंने सुना भक्ति चारू महाराज जी के बारे में, और सुनने के बाद उन्होंने बोला कि बुलाओ भक्ति चारू को। ऐसे बोला उन्होंने भक्ति चारू को। भक्ति चारू महाराज आए तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और काफी तपस्या के कारण शरीर भी दुबला पतला था। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ राधा माधव का महा केक लेके आओ। तो केक आया, भक्ति चारू महाराज को बोला खाओ इसको। अभी चतुर्मास्य खत्म नहीं होता है, कार्तिक से पहले की बात है। भक्ति चारू महाराज कहते प्रभुपाद मैं तो चतुर्मास्य कर रहा हूं, मैंने मीठा ना खाने का व्रत लिया है। प्रभुपाद कहते खाओ इसे। तो भक्ति चारू महाराज फिर भी थोड़े से संशय में हो गए। प्रभुपाद जी कहते मैं तुम्हें ऐसे हजारों कार्तिक या चतुर्मास्य का लाभ दे सकता हूं, इसे खाओ, शेव करो और प्रचार पे जाओ। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने, देखिए इस श्लोक के अनुवाद में लिखा है कि जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, किस चीज का लाभ उठाता है, जो भी पृथु महाराज की कथाओं को सुनने का लाभ उठाता है, और उस लाभ का वर्णन पिछले श्लोकों से हो चुका है, 31वें श्लोक से चल रहा है। देखिए लाभ क्या क्या है इसके, 31वें श्लोक से। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, ये 31वां श्लोक है। सबसे पहला श्लोक जब इस कथा सुनने का लाभ बताया जा रहा है, मतलब पृथु महाराज के बारे में सुनने का, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अथवा अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। इसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो स्वयं सुनता है तथा अथवा अन्य को सुनाता है। और जो आज का श्लोक है उसमें भी श्रील यही बात बोली गई है, ये प्रभुपाद बोलते हैं। तात्पर्य के पहले शुरुआत में प्रभुपाद ने तात्पर्य ऐसे शुरू करा है पिछले वाले श्लोक का एक शब्द लेकर, कौन सा, श्रावेत। श्रावेत शब्द इंगित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए वरना अन्य को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो क्यों मैंने ये पास्ट टाइम सुनाया, इसी वजह से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। क्योंकि अनुवाद में लाभ उठाने की बात बोली है पृथु, माफ कीजिएगा, मैत्रेय मुनि ने। मैत्रेय मुनि ने बोला कि इसका लाभ कैसे उठाना है, उन्होंने बताया कि लाभ उठाना चाहिए। पहले श्लोक में जब इस पृथु महाराज के बारे में सुनने की बात गई थी तब भी ये बात बोली गई। ये बात बोली किसने, मैत्रेय मुनि ने स्वयं। जो स्वयं सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है, उसके बाद देखिए और लाभ सुन लेते हैं इसके। श्लोक संख्या 32, यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है, यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है, यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है, यदि शूद्र है क्या होगा शूद्र का, तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। कलो शूद्र संभव, हम सभी हम सबों के लिए ये वरदान है। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निस्संतान है तो संतान युक्त, और निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है, निरक्षर मतलब अनपढ़, तो वह तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्द में पृथु महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्यों को दूर करता है। इसके बाद और भी है लाभ। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कली काल के कलमश का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक है, कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार ला सकते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। उसके बाद सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम भक्त समाज के लिए है, ये श्लोक संख्या 37 है, जिसका शब्द प्रभुपाद जी ने अगले श्लोक में लिया है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णता लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना चाहिए। अर्थात कोई फुली कृष्ण कॉन्शियस पूरी तरह से भक्ति में है, तब भी उसको पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना चाहिए और दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि व्यक्ति अगर बहुत भक्ति में एडवांस भी हो जाता है और तब भी उसको ये सुनना चाहिए, और बता रहे हैं कि कई बार भक्त लोग सीधा रासलीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं जो अक्सर हम देखते हैं भारत में, उसका प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं। अर्थात श्री रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में यह बात बोलते हैं कि व्यक्ति अगर उत्तम भक्ति में भी पहुंच गया लेकिन उसे व्यवहार उसका नवदीक्षित भक्त के जैसा होना चाहिए, और हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में जितने भी भक्त जो काफी हम देखते हैं कि काफी प्रचार में लगे हुए हैं काफी, लेकिन वो अपनी साधना को बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं हमें सिखाने के लिए। देखिए ये भागवतम की बातों को वो जीवन में उतारते हैं, इसीलिए गुरुजन कहलाते हैं। ये बात हमें भी सीखनी चाहिए। चलो प्रभुपाद जी क्यों पिछले, क्योंकि उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने वो श्रावेत शब्द को लिखा, श्रावेत के बारे में लिखा कि प्रचार कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले जितने भी लाभ बताए हैं इसमें, कोई राजा बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, और खैर कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी वो कर दी है पूर्ति, तो हम लोग शूद्र हैं किस स्थिति में है, तो हमारे अगर हमें भक्त भी बनना है या भक्त बनने की कोशिश करनी है तो इसके बारे में सुनना चाहिए। अनुवाद में इसमें लिखा है, इसका लाभ, जो कोई इसका लाभ उठाता है, मैत्रेय मुनि कहते हैं लाभ उठाता है, तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि लाभ कैसे उठाएंगे। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो श्लोक में क्या शिक्षा है उसको हमने जीवन में कैसे उतारना वो समझाते हैं। इसीलिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि तात्पर्य जो पर्पस आर माय एक्सटेसी, प्रभुपाद जी के भाव है। एक शब्द कौन, एक भक्त बोल रहे थे ये तात्पर्य नहीं, ये भावार्थ है, उनके भावों का अर्थ है। ये एक्सटेसी क्यों है श्री प्रभुपाद जी की, क्योंकि वो हम जैसे जीवों को कठिनाइयों को देख सकते हैं, मतलब परेशानियों को। देखिए अगर हम अपने लेवल पे सोचे तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा तो ये ज्ञान है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। तभी कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति करने की कि किसी ना किसी तरह ये हमारा स्वार्थ है कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकले। अलग अलग स्तर होता है व्यक्ति का, मेरा स्तर तो यही है अभी कि हमारी ये इच्छा है कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकले। लेकिन अगर आप प्रचार करना चाहते हैं जाते हैं तो जो आम व्यक्ति है जैसे हम भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगा, वो तो इस बारे में सोचता भी नहीं है, राइट, सोचता ही नहीं वो इस बारे में। वो देख रहा है कि मेरे आने आगे आने वाले जो व्यक्ति थे, मेरे दादाजी मेरे पिताजी भी कई बार वो शरीर छोड़ चुके हैं और मेरी भी एक दिन बारी आएगी, लेकिन व्यक्ति सोचते नहीं क्या इसका भी कोई उपाय है। शास्त्र इस बातों को बताते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल यही नहीं देखता, वो देखता है कि ये जो जीव है ये कृष्ण से, इसमें कृष्ण प्रेम है। उसका उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि ये जन्म मृत्यु से बाहर आ जाए, वो तो ब्रह्मवादी व्यक्ति भी निकल जाता है। और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य देने का उद्देश्य ये कभी भी नहीं था, वो कोई भी तात्पर्य उठाएंगे हमेशा कृष्ण प्रेम की बात करेंगे, इससे नीचे की बात ही नहीं करते। हमारे अध्यापक जैसे टीचर्स जो मिलते हैं, जो हम कहते हैं बच्चों को हमेशा ऊंचा गोल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें ऊंचा गोल देंगे, अगर वो उसकी कोशिश करेंगे कम से कम कुछ लेवल तक तो पहुंचेंगे ना। अगर हम उन्हें देंगे शुरू में छोटा गोल या नीचे का गोल तो वो और नीचे आ जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करा किसी भी उसमें कि नहीं आप, और कहीं भी अगर किसी भी श्लोक में अगर कहीं भी मायावाद का कुछ थोड़ा सा अंश आता तो एकदम प्रभुपाद जी उसको खंडित करते हैं। आपने पढ़ा होगा अक्सर खंडित करते हैं, देवी देवताओं को पूजा को भी मना कर दिया साफ। कई बार जब नया व्यक्ति जब भगवद गीता पढ़ता है तो उसे कहते हैं अरे ये तो ब्रह्मा शिव आदि को ही मना करते हैं प्रभुपाद जी, ये क्या चक्कर है, वो समझौता करना ही नहीं चाहते। कृष्ण प्रेम बस। और कृष्ण प्रेम में भी अगर आप एक श्लोक भगवद गीता का देखेंगे जिसमें प्रभुपाद मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि हमें भगवान श्री राम जी की भी पूजा नहीं करनी, मतलब हमारा जो गोल है अयोध्या भी नहीं है। उसमें लिखते हैं कि नारायण भी नहीं है, कौन है हमारे गोपी जो गोपियों के कृष्ण हैं, जो दो हाथ वाले कृष्ण हैं, जो यमुना के किनारे खड़े। प्रभुपाद लिखते हैं साफ साफ, देखिए भगवत गीता में लिख रहे हैं, जैसे हम भगवत गीता जो एबीसी है। तो इसी तरह इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये शब्द को लिया, पिछले शब्द को, कि अगर हम ये सब लाभ उठाना चाहते हैं तो कोई अगर लाभ ना मिले व्यक्ति को, खासकर हमारी अवस्था में, तो कोई उसको उत्साह नहीं मिलता कार्य करने का, क्योंकि अभी हम फलों के पीछे हैं। फलत्वम कहते हैं, एक लेक्चर में सुन रहा था कि हम फल के पीछे रहते हैं आध्यात्मिक जीवन के आने में, आने के बाद भी, कि हम इससे क्या मिलेगा, मैं जब कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये मन में रहता है। अभी जब इसलिए नहीं हो रहा कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देखिए जब जैसे आम, थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाना की कोशिश करूंगा इस बात को मैं कि किस तरह से फल के पीछे रहते हैं, और जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में आता है तो उसे फल की चिंता नहीं रहती, वो फल को सोचता भी नहीं है। जैसे अगर हम जो जो भक्त लोग अभी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, अगर आपस में कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, अगर बहुत अच्छी दोस्ती है, तो अगर कोई दोस्त को कोई चीज पसंद है तो जो दूसरा दोस्त है वो उसके लिए एकदम करने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करेगा कि मैं इसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूं क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। उससे उसको क्या मिलेगा, उसकी चिंता ही नहीं होती उसको, सही बात नहीं? और जैसे पति पत्नी में अगर बहुत अच्छा संबंध है तो पत्नी पति को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती है, उससे उसको क्या मिलेगा, उसको उसकी चिंता नहीं होती, केवल पति की प्रसन्नता के लिए। मान लीजिए कुछ ऐसा पकवान होता है जो पति को पसंद है और पत्नी को पसंद नहीं है, तो पत्नी बनाती है, क्यों? क्योंकि पति को पसंद है, ठाकुर जी को भोग लगा के पति को खिलाएगी, उसको पसंद है नहीं, उसकी उसको चिंता ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पति प्रसन्न हो रहा है और उसकी प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है, वो खुश हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण से प्रेम की स्थिति में आते हैं, जब कृष्ण से इस तरह का संबंध बनता है, तो हम केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उससे पहले भागवतम हमें तैयार करता है, पृथ्वी महाराज की कथा सुनाते हैं और कई कथाएं आएंगी, फिर प्रहलाद महाराज की कथा आएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पिछले जो श्लोक में इस बात को लिखा है कि एकदम से रासलीला के बारे में सुनते, उसमें लिखते हैं भी सहजिया, प्रभुपाद शब्द लिखते हैं सहजिया, तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं उस तरह से उसको ग्रहण करना चाहिए, तब हम भटकेंगे नहीं, परेशानी नहीं आएगी। फिर प्रभुपाद जी से बताते हैं कि हमें स्वयं भी पढ़ना चाहिए, अर्थात पहले एक श्लोक, जब हम श्लोक या पया जब भक्ति में आने का जब हमने शुरुआत करी थी, अभी भी मतलब साधना करने का प्रयास शुरू किया था, तो एक विदेशी भक्त ने, मुझे याद है, क्लास दिया था दिल्ली मंदिर में, तो उन्होंने ये शब्द बोला, भारत भूमि ते होइले जन्म याद, जन्म सार्थक करी पर परोपकार। जब उन्होंने बोला तो मन में बड़ा, भारत भूमि में इसमें दो चीजें हैं, एक तो भारत भूमि में जन्म लें, अब तो खैर भारत भी है, उसमें फिर समझाया भी किस तरह से भारत भूमि, वैसे पूरे पृथ्वी को भारत भूमि बोला गया है, खैर अभी अब अलग अलग हो गया है, लेकिन विशेषकर अब जो इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है उनके बारे में बोला था कि पहले जन्म सार्थक करें। इसमें भी प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं पढ़ना चाहिए, कि हमें खुद भी अध्ययन करना चाहिए और फिर उसको अन्य जो जीवात्माएं हैं उनको पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित कैसे कर पाएंगे हम? किसी को आप प्रेरणा नहीं दे सकते किसी भी कार्य करने के लिए जब तक कि आप खुद ना करते हो कार्य। एक एक कोड मुझे किसी ने भेजा था, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इंग्लिश में है, फिर मैं हिंदी में कोशिश करूंगा अनुवाद करने की उसके ठीक से। इसमें देखिए स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है, हम जब बाहर जाते हैं प्रचार करने, एक तरह से वो नए व्यक्ति होते हैं, उनको पता नहीं होता कृष्ण भक्ति के बारे में, इस तरह से वो भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं थोड़ी सी, और वो लोग नहीं होते, तो ये स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू नो दैट यू केयर अबाउट What you are teaching. The subject matter, the content, the importance of the discipline. If you don't believe it's important, why should they? कि जो स्टूडेंट को हम पढ़ाने जा रहे हैं या छात्र को बताने जा रहे हैं कुछ, वो ये उनमें ये अपने आप होती है, बोलने की जरूरत नहीं होती, ये उनके मन में होता है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं क्या हम उसकी, क्या उसको जीवन में उतारा, या उसकी चिंता है हमें, The content, the importance of the discipline, if you don't believe it's important, अगर हम उसकी महत्वता को हमारे चेतना में नहीं है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना जरूरी है या सुनना जरूरी है, जब ध्यान पूर्वक करना जरूरी है, या हम इसकी इंपॉर्टेंट अगर हमारे हृदय में नहीं है तो वो उनके हृदय में नहीं जाएगा. Why should they? तो वो क्यों करेंगे फिर. उसके बाद अगला कोट है, स्टूडेंट वॉन्ट टू नो दैट यू केयर अबाउट देम. जो छात्र है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, वो ये जानना चाहता है कि आप उसकी केयर करते हैं, क्या आप उसके बारे में सच में चिंता करते हैं. दैट ईच ऑफ देम इज अ पर्सन विद होप्स प्रॉब्लम्स एंड ए क्राउडेड स्केड्यूल. कि हम सब व्यक्ति, हम जिसको हम प्रचार करने आ रहे हैं उसके पास भी काफी कार्य होता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी भी कुछ समस्याएं होती है. मे बी वर्स, हो सकता है हमसे भी बेकार हो, हमें नहीं पता होता. इफ यू ट्रीट देम एज ए नंबर्स, अगर आप नंबर की तरह उनको कि इतने मैंने मतलब भक्तों को प्रचार करा, भाई मैंने 100 भक्तों को प्रचार करा, 200 भक्तों को प्रचार करा, इफ यू ट्रीट देम एज नंबर, वाई शुड दे ट्रीट यू एनी डिफरेंटली. अगर हम उनको नंबरों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी एक नंबर की तरह देखेंगे. आज वो व्यक्ति आया था, बोल के चला गया बस. तो ये मैंने क्यों कोट पढ़ा कि प्रेरणा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक संबंध नहीं बनाएंगे, रिलेशन नहीं बनेगा, जब तक हम केयर नहीं करेंगे सच में उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को हम प्रचार करने जा रहे हैं. इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्रचार में एक भक्त बनाने में कितने गैलन लगता है, खून या ब्लड, सम गैलन, मतलब कई लीटर्स ब्लड लगता है. मतलब हमें करना पड़ेगा वो कार्य, ये नहीं बस उपदेश दे दिया और खत्म. उपदेश देना अच्छा है, इसलिए मैंने उपदेश नहीं पढ़ा ये सब, प्रभुपाद ने प्रचार लिखा है वहां. उपदेश देना और प्रचार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. उपदेश कोई भी दे सकता है, प्रचार करना बड़ा मुश्किल होता है. रूपा जी ने प्रचार करा तभी आज हम यहां बैठे हैं. जा रहे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में बोलना है. कृष्ण जैसे हमारी चिंता करते हैं, हमें भी भक्त की चिंता करनी पड़ेगी. आप कभी, मुझे अभी तक याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक क्रिश्चियन वो आता था, मतलब प्रचारक. हमारे घर के ऊपर वाले फ्लैट में वो क्रिश्चियंस रहते थे, वो क्रिश्चियन प्रचार करने आता था. वो संडे संडे आता था और हमसे एक एक डिटेल्स पूछता था हमारे बारे में, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप कैसे हैं, आपने ये इस मतलब. अब याद आता कि वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उनका जो प्रचार का मूड उन्हें पता है. प्रभुपाद ने भी कहा अगर प्रचार करना सीखना है तो क्रिश्चियन से सीखिए. एक बार मैं एक दिल्ली के बहुत बड़े सीनियर भक्त से के साथ आ रहा था दिल्ली से, तो वो बता रहे थे जो क्रिश्चियन जो प्रचारक होते हैं उन्हें आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए, वो क्या कहते हैं जहां पे वो दफनाया जाता है, क्रिश्चियंस की जो सिमेट्री में रहना पड़ता है, उन्हें उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि जाके सिमेट्री में रहो. उस समय अगर भूत वगैरह देखे तो समझो कि ये आत्मा ही है, घबरा. कहते हैं ऐसी ट्रेनिंग होती है उनकी. तभी देखिए कहां कहां पहुंच जाते हैं वो प्रचार करने. आसाम के पता नहीं कहां कहां पहुंचे हुए, और सिक्किम कहां कहां. हम तो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहते. ये है प्रचार. उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के दूसरे भाग में ये समझाने का हमें समझाया है कि भगवान के भक्त, यहाँ पृथ्वी महाराज का उदाहरण देते हुए बताया है कि भगवान और उसके भक्त के बारे में गुणगान करना अलग अलग नहीं है. मतलब अगर भक्त का गुणगान हो रहा है, भक्त के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसको भी उतने ही ध्यान से लेना चाहिए जैसे भगवान की चर्चा हो रही है. इसीलिए कई मंदिरों में श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जाता है, हफ्ते में एक दिन लीलामृत पढ़ा जाता है श्रील प्रभुपाद जी के बारे में. हमारे यहाँ भी आई थिंक संडे को है ना प्रभुपाद लीलामृत के और प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, गर्ग मुनि प्रभु ना, गर्ग मुनि प्रभु बताते हैं कब, तो इस तरह से श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है और भगवान भी बताते हैं। देखिए अगर हम प्रचार को ठीक से करेंगे तो सबसे पहले हम भगवद गीता में बात बताते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा इस बारे में, ये श्लोक भी याद होंगे कईयों को, जैसे कि भगवान को कृष्ण को किस तरह का व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद है। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 श्लोकों में बात बोलते हैं, उससे पहले के श्लोकों में बताते हैं कि भगवान कि देखिए सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस श्लोक के बाद ये बात बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आने के बाद क्या करना है। आप मेरी शरण में आ गए, ब्रज में आ गए, कई लोग तो कहते हैं ब्रजा मतलब ब्रज में आ जाना, मैंने सुना है, लेकिन ब्रज में भी आ गए तो करना क्या है, फिर क्या करना है, या इदम परम गोह्यम मद भक्ति अभिदाशति भक्ति मय परम कृत्वा मामे वस्त्र असंशय, लेकिन ब्रज में आने के बाद भी प्रचार करना है। आज प्रचारक गए हैं हमारे कुछ जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो गोवर्धन जी की आशीर्वाद लेने गए हैं गोवर्धन जी का, इस तरह से मेरे रहना है। हमारी जो संस्था है वो प्रचार की संस्था है, लेकिन प्रचार भी अलग अलग स्तर पर होता है, इसलिए पढ़ना है पहले भारत भूमि पर हुई जन्म यार, जन्म सार्थक करी, पहले सार्थक करना है, मतलब सार्थक करने का ये मतलब नहीं है कि आप जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब प्रचार शुरू होगा, ये भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अच्छे से साधना करनी है, और अगर हमारे गुरुजन हमारे सीनियर भक्त लोग या डिवोटीज हमें आज्ञा देते कि आप ये कार्य करिए तो फिर प्रचार में लगना है। एक्चुअली में प्रचार तो मैं बहुत सीनियर भक्त से सुन रहा था, प्रचार जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना वृत्त में सारे कार्य प्रचार के हैं, सारे कार्य आप किस चेतना में वो कर रहे हैं बात है। सबसे पहले तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जैसे हमने भी सुना, जैसे पुजारी है वो अगर अच्छा विग्रह भगवान श्री विग्रह को ड्रेस कर रहा है तो उसके मन में एक तो ये चेतना होती है कि मैं इनकी प्रसन्नता के लिए ये कर रहा हूं, दूसरा कि जब दर्शन करेंगे बद्ध जीव वो देख के बहुत प्रसन्न होंगे, उनको लाभ मिलेगा, तो उसका ड्यूटी का ड्रेस करना अर्चक विग्रह को सजाना वो प्रचार है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने तो ये बोला कि जब वैष्णव सड़क पे जा रहा है या कहीं जा रहा है तो उसको देख के व्यक्ति हरे कृष्ण बोलता है, अर्थात हमारा तिलक लगाना भी प्रचार है, अरे हरे कृष्ण वाले आ गए, उसने हरे कृष्ण बोल दिया, प्रचार हो गया। इस तरह से ही माताएं जो माला बनाती हैं, जो प्रभु जी प्रसाद बना रहे हैं या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भोग बना रहा है, सब प्रचार है। व्यक्ति जो प्रसाद सर्विस कर रहा है, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति प्रसाद लेने आता है और उस व्यक्ति को अगर आपने ठीक से प्रसाद सर्विस नहीं करा तो उसकी भावना अच्छी नहीं रहेगी फिर मंदिर के प्रति, सही बात है ना। और अगर उसको बड़े अच्छे से प्रसाद खिला दिया, आप लोग गुरुद्वारों में कौन कौन गया हुआ है, कितनी बार गया, या कोई गया गुरुद्वारे में, कभी गुरुद्वारे जाइएगा, देखिए वो जो चप्पल लेते हैं ना आपकी शू स्टैंड में, वो ऐसे लेंगे उसको सर पे लगाते हैं फिर रखते हैं, और जब वापस आते हैं वो साफ करेगा फिर देगा। देखिए चप्पल लेना रखना ये प्रचार है, हमें समझना चाहिए कि क्या हम स्थिति पर हैं वहां के। कभी देखिए जब भक्ति कृष्ण भावनामृत में आने से पहले तो हम जाते थे कई बार स्टूडेंट्स से, तो वहां पे वो जो उनका जो भी भोजन हो बड़ा खाने में आनंद आता था, एक तो फ्री में होता था और उनकी जो सर्विस करते थे तो बहुत अच्छे से सेवा करते थे। वहां आपको कोई वर्कर नहीं मिलेगा कि कोई बर्तन धोने वाला वर्कर है वहां पर, वो सब खुद करते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उतरते हैं और माताएं लग जाती हैं प्लेटें साफ करने में, प्रभु जी लग जाते हैं कुछ करने में, सब वहां वर्कर आपको हार्डली मिलेंगे, बताइए प्रचार है। तो इस तरह से जब स्थिति पर आएंगे तब भगवत आ जाना निश्चित है प्रभुपाद जी की। इस तरह से जब प्रसाद में जो प्रसाद सेवा या प्रसाद ले रहे हैं, मुझे याद है एक बार हम जा रहे थे, माफ कीजिएगा मैं अपने उदाहरण ज्यादा दे देता हूँ लेकिन शेयर कर रहा हूँ बस। एक बार हमारी मेरी लड़की का एक प्रोग्राम था मथुरा में एक स्कूल में, उनका एनुअल फंक्शन था, तो वो मैं जा रहा था, मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मैं सोच रहा किससे पूछूं किससे पूछूं, मैं एक तेराहे पर खड़ा था, वहाँ साथ लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा है, तो मैं उस तरफ गया, एक वो उनके जो संत होते हैं वो थे, वो खड़े थे बाहर। मैंने पूछा प्रभु जी ऐसे ऐसे है स्कूल, ऐसे हाथ जोड़ के बोलता, प्रभु जी आप यहाँ से आगे जाइए, आगे जाकर के मतलब इतने अच्छे से बोला, उसका सिर्फ बोलने से मन प्रसन्न हो गया। इस तरह से अगर मंदिर में आने वाले व्यक्तियों का हम स्वागत करेंगे और उनको लगेगा कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना स्टूडेंट के बारे में, अगर उनको लगेगा कि ये हमारी सच में हमारी केयर करते हैं, हम आए हैं हमारा स्वागत हुआ है, क्यों नहीं वो कहने पर जब करेंगे, क्यों नहीं वो प्रेरणा मिलेगी उन्हें। तो इस तरह से प्रचार करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को, ये नहीं ये तो केवल वो जो व्यास आसन में बैठते हैं उनका कार्य है या मंदिर के मैनेजमेंट के लोगों का कार्य है, नहीं, ये मंदिर सबका है, चाहे आप बाहर से आ रहे हैं चाहे हमारे अंदर रहते हैं। क्या कृष्ण बलराम जी केवल मंदिर में रहने वालों के, नहीं, कृष्ण बलराम के जो देखने आ रहे हैं, कृष्ण बलराम के दर्शन करने आ रहे हैं, उनके गेस्ट हैं। गुरु श्री गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज जी ने बोली थी ये बात कि वो लोग गेस्ट हैं, उनको अतिथि की तरह स्वीकार वो देना चाहिए आदर। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं होती आने की, ये संस्कार तो भारत में बहुत है ना, कोई अतिथि आता तो एकदम से सब तैयार हो जाते हैं उसके स्वागत के लिए, ऐसे सारे आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति में जरा सा भी संशय दिखे किसी के चेहरे पर, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, इतना पूछने से बहुत हो जाएगा। एक आखिरी घटना या रियलाइजेशन मैंने सुना एक बहुत सीनियर भक्त से, एक बार भक्ति रसामृत महाराज जी क्लास दे रहे थे इंग्लिश में श्रीमद् भागवतम क्लास अंदर, और उनका बोलने का जो आपने तो सुना ही होगा सबने, बहुत सॉफ्ट और बहुत रस मतलब अच्छा लगता है, तो सुनना ही अच्छा लगता है उनको। तो एक लेडी खड़ी थी वहां पे, बड़ी मॉडल लड़की मतलब लेडी, तो उन्होंने बाद में फिर महाराज से बात करी, और तो उसने उसने बोला कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों को सुना लेकिन आप जैसा बोलते हो ना ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, कैसे है आप में ये गुण। तो महाराज ने बोला देखिए प्रचार करने की बोल मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि आप जब कीजिए। तो ये है प्रचार। तो ये बात श्री प्रभुपाद जी में बताना चाहते हैं श्लोक से कि अगर हमें लाभ उठाना है इनका, तो जो कोई इसका लाभ उठाता है, लाभ उठाने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा ना, तो ये हमें करना पड़ेगा साधना, और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे सारे जितने भी हमारे गुरुजन यही बात बोलते हैं कि हमारा जब बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए, अगर जब ध्यानपूर्वक नहीं होगा, और ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोली एक्चुअली में कि अगर हमारा जब ठीक से नहीं होगा तो बाकी की क्रियाएं ठीक से नहीं होगी, इसलिए पहले हमारा जब मतलब अर्थात साधना भागवतम शरणम जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया उसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद। 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न कोई करेक्शन? स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट वाला पढ़ देता। दे डोंट केयर व्हाट यू नो अंटिल दे नो दैट यू केयर। दे डोंट केयर वो परवाह नहीं करेंगे अंटिल दे नो दैट यू केयर। स्टूडेंट्स, दिस इज स्टूडेंट्स, दे आर सेइंग स्टूडेंट्स वांट्स टू नो दैट यू केयर अबाउट व्हाट यू आर टीचिंग. आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में आप उसकी मतलब चिंता है, आप खुद भी कर रहे हैं कि नहीं. स्टूडेंट्स वांट टू नो, वो बिहेवियर में दिखता है. इसलिए आचरण, द सब्जेक्ट मैटर, द कॉन्टेंट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन. इफ यू डोंट बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट, वाई शुड दे? अगर हमें उसकी महत्वता नहीं है तो हम वो क्यों करेंगे? स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड वन. स्टूडेंट वॉन्ट टू नो दैट यू केयर अबाउट दैम. दिस इज पहले वाला जैसे. स्टूडेंट वॉन्ट टू नो दैट यू केयर अबाउट दैम, दैट ईच ऑफ दैम इज अ पर्सन विद होप्स. हर एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है, होप्स, जिसकी कुछ आशाएं हैं, जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जिसका भी अपना भी उसके पास काफी कार्य है, मे बी वर्स, हमसे भी ज्यादा हो सकता है. बिजनेसमैन होते हैं कई बार, बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने जाओ और टाइम ही नहीं होता उनके पास, क्योंकि वो इतने बुरी तरह फंसे हैं बेचारे. इफ यू ट्रीट देम एज नंबर्स, दे शुड, वाई शुड दे ट्रीट यू एनी डिफरेंट? अगर हम उन नंबर की याद, मैंने इतने लोगों को प्रचार कर लिया, मतलब नंबर के पीछे पड़े रहेंगे तो वो भी आपको एक नंबर की तरह देखेंगे. हाँ, एक साधु आया था, बोल के चला गया. इसलिए केयर करना पड़ेगा. जैसे हम नंबर्स में केयर नहीं करते, आज मैंने इतने, जैसे कई भागवत कथा होती है, कई बार बड़े बड़े वो होते हैं, खूब लोग बैठे होते हैं ना, तो बदलाव आता है उनमें क्या? कितने लोग भक्त बनते हैं? प्रभुपाद जी ने प्रचार करा, कितने लोग भक्त बन गए? और उनके शिष्य प्रचार कर रहे, कितने लोग भक्त बन रहे हैं? तो नंबर्स में नहीं, व्यक्ति में. जब कहने का अर्थ मतलब यह है कि व्यक्ति को जब प्रचार करने जा रहे हैं तो चाहे एक व्यक्ति को, मतलब एक पर्सनैलिटी की तरह लेना, एक पर्सन की तरह लेते हैं. इसे कहते हैं पर्सनलिज्म. हाँ, पर्सनलिज्म इसे कहते हैं. अदरवाइज दिस इज इम्पर्सनलिज्म. प्रचार में भी इम्पर्सनलिज्म है. मायावादी से कहते हैं खूब सारे सब एक हैं, ऐसे नहीं होगा. श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि. प्रसाद दे दीजिए.